ओम शांति। आज भट्टी का चौथा दिन है, समापन का दिन है और जब हमें सेंटर पर रहते ये शुभ समाचार मिलता है कि हमें भट्टी करने का अवसर पांडव भवन में मिला है तो दिल फुला नहीं समाता है, गदगद हो उठते हैं और कितने अरमान संजोते हैं कि हम जाएंगे, योग तपस्या करेंगे, मौन भट्टी करेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, वो परिवर्तन जो बाबा हमसे चाहते हैं, है ना, अरमान होते हैं ना हमारे। और फिर वो दिन भी आ जाता है और हम पहुंच जाते हैं मधुबन धरनी पर, ऐसी धरनी जहां कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती योग लगाने के लिए, स्वतः ही निरंतर योग होता रहता है। लेकिन ऐसा इस धरनी का कमाल अगर है तो उसका एक ही कारण है, स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए हैं, स्वयं बाबा मम्मा ने वर्षों तक तपस्या की है, न सिर्फ बाबा ने मम्मा ने लेकिन दादियों ने दादाओं ने ऐसी तपस्या करके इस भूमि को इतना शक्तिशाली बना के रखा है कि आने वाला हर शख्स उसकी अनुभूति करता है। लेकिन फिर हमारा भी फर्ज बन जाता है कि ऐसी धरनी पर पहुंचकर हम उसकी इस तपस्या वाले वाइब्रेशन को, वातावरण को बनाए रखने में साइलेंस का थोड़ा सा योगदान दें। तो मौन भट्टी हमें जो करने के लिए मिलती है, साइलेंस भट्टी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य होता है कि मौन का जीवन में महत्व क्या है। कई बार हमें कोई चीज का महत्व नहीं मालूम होने से वो इतनी वैल्यूएबल महसूस नहीं होती है, हम उसका मूल्य नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें उसका महत्व पता चल जाए तो हम फिर उसका मूल्यांकन भी करना आरंभ कर देते हैं। और इसलिए सिर्फ मौन व्रत धारण करो, मौन रखो, ये बोलने से बात नहीं बनती है जब तक कि इसकी गहराई हमें बहुत अच्छी से पता नहीं हो। तो आज हम उसी को देखेंगे। पहले थोड़ी सी हंसी वाली बात कर लें कि एक बार चार सन्यासी थे, भिक्षु थे, चारों ने सोचा हम एक हफ्ता मौन व्रत धारण करेंगे और चारों ने ये व्रत लेकर मौन आरंभ किया। मेडिटेशन के लिए जब बैठे, बहुत भिक्षु होते हैं शायद वो कैंडल जलाते या कुछ करते अपने सामने, तो कैंडल जल रहा था और जलते जलते बुझ गया। तो एक भिक्षु बोल पड़ा, अरे कैंडल बुझ गया। दूसरा कहता है, तुझे मालूम नहीं अपना मौन है। तीसरा कहता है, अरे मौन के नियम को तुमने क्यों तोड़ा। चौथा बोलता है, आहा मैं तो चुप रहा। तो शायद कुछ ऐसा ही ऐसा ही मौन चल रहा है। कहाँ ना अरमान होते हमारे कि यहाँ हमारी गृहस्थी है, जिम्मेवारी है, हम चाहते हुए भी मौन नहीं रह पाते हैं। हम भट्टी करने जाएंगे, वहाँ हर प्रकार की जिम्मेवारी से मुक्त रहेंगे और हम बहुत अच्छी मौन तपस्या करेंगे, योग तपस्या करेंगे। लेकिन फिर ऐसी वाली हो जाता है ना, हो जाता है, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत समय के बाद ये अवसर मिलता है इस वरदानी भूमि पर आने का। तो बेशक जो उमंग होता है, जो उत्साह होता है, और इतना बड़ा परिवार शायद वहाँ इकट्ठे मिलते भी नहीं होंगे, तो जब यहाँ आकर मिलते हैं तो थोड़ी सी लेन देन हम कर ही लेते हैं, न सिर्फ आपस में लेकिन मधुबन में भी आए हैं तो मधुबन वालों से भी, क्योंकि फिर कब मिलना होगा, है ना, तो हम कर लेते हैं, कोई हर्जा नहीं। लेकिन हमें यहाँ से समझ कर तो जाना चाहिए ना कि आखिर भी मौन का महत्व क्या है, ताकि हम अपने जहाँ पर भी वापस जाएंगे, अपना सेवा स्थान है, जो कुछ भी है, तो हम इसकी गहराई में और उतरें और तब जाकर सचमुच हम बाप समान बन सकेंगे, जिस तरीके से हम पवित्र डिवाइन फॉर्म में नीचे उतरे थे, उसी फॉर्म में हमें अपने उस शांति धाम में पहुंचना है। आज बाबा ने कितनी अच्छी बात कही ना, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। इस संगम पर, इस धरा पर वो आता है, हम बच्चों को नया जन्म देता है और जन्म देकर हमारी पालना आरंभ करता है। चाहे हम सबका अलौकिक जन्म जहां भी हुआ हो, लेकिन जब हम मधुबन में आते हैं तो वो पालना का भी एहसास दिलाता है, करता है ना पालना पूरी। एक बाप जिस तरीके से पालना करता है बच्चों की, वो भी आप यहाँ अनुभव करते हैं आके। फिर दूसरी बात कही बाबा ने कि सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा देता हूँ शिक्षक बनकर, तो आपकी क्लासेस भी चल रही हैं, है ना, किचन में जाते हैं तो वहाँ पालना मिलती है, रहने करने की व्यवस्था बाबा ने दी, वो भी एक पालना ही है, वो पिता का फर्ज होता है ना, तो बाबा उस तरीके से पालना कर रहा है। फिर टीचर बनकर मुरली पढ़ाता है, हा? फिर निमित्त बनाकर किसी को उसी ज्ञान की गहराई को समझाता है, तो टीचर का भी पार्ट प्ले करता है। और साथ साथ कहा कि सदगुरु बनकर शांति धाम लेके जाता हूँ, और वो शांति धाम हमें जब यात्रा पूरी होगी वो तो तब जाएंगे, लेकिन मधुबन घर में बैठकर वो वातावरण देता है कि बैठे यहाँ हो लेकिन शांति धाम जाके पहुँच जाओ, ऐसा वो वातावरण हमें देता है। तीनों ही रीति से वो हमारी पालना करता है, कि जिस पालना से हमारा भी फर्ज बन जाता है कि अब उसका रिटर्न दे। वही किया इसके पहले वाला क्लास, तपस्या क्या है अपने आप में, बाप दादा ने जो हम पर स्नेह लुटाया है उसका रिटर्न है तपस्या। घरों में भी माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, खूब परवरिश करते हैं, उनके पढ़ाई के लिए कितना खर्चा करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, सब कुछ देते हैं, एक ही एक्सपेक्टेशन होती है, कौन सी, बच्चे आज्ञाकारी बनकर चलो, मैं जैसा हूँ वैसे बनकर चलो। तो ये पिता भी यही कहता है, बच्चे आज्ञाकारी बनकर चलो, जैसा मैं हूँ वैसे तुम बनो, और उसी के लिए तपस्या है। तो मौन की ये तपस्या है। तो पहले ही दिन बता दिया था, क्योंकि शांति धाम माना कौन सा धाम, निर्वाण धाम, और निर्वाण धाम का सिंपल मीनिंग बाबा ने हमें क्या बताया? जिस धाम में वाणी नहीं है, जिस धाम में आवाज नहीं है, उसे कहते हैं निर्वाण धाम। मैं कौन, मेरा कौन और मैं कहाँ का, ये तीन प्रश्न है ना। मैं आत्मा, शांति, चांद स्वरूप आत्मा। मैं शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान। मैं शांति धाम की निवासी। और अभी इस दुख धाम में, इसलिए शांति के पुनर्स्थापन के लिए। यही बात दादी ने भी हर बार याद दिलाई, तीन प्रश्न हमेशा, मैं कौन, क्योंकि यही तो पूरे ज्ञान का सार है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ का हूँ और यहाँ अब किस लिए हूँ मैं। तो मैं हूँ शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान, शांति धाम की रहवासी, यहाँ धरती पर शांति स्थापन करने के लिए हूँ। तो वो शांति स्थापन हम कर सके, वो बाप जो शांति का सागर है उसका नाम बाला कर सके, उसके लिए पहले तो अपने में शांति का स्टॉक भरना पड़ेगा। हाँ, आज का स्लोगन क्या था? क्या है आज का स्लोगन, आज का समान? विश्व को शांति देने वाली मैं शांति दूत आत्मा हूँ, बाबा ने स्लोगन में भी यही कह दिया आज। तो हमें शांति का अगर दान करना है तो शांति का स्टॉक चाहिए ना। अब दान उसी चीज का कर सकते हैं जिसका आपके पास स्टॉक हो। अगर स्टॉक ही नहीं हो तो दान क्या करेंगे। और इसलिए पहले जरूरी है कि मैं अपने में शांति को धारण करूं। और कौन सी वाली शांति? परम धाम वाली शांति, निर्वाण धाम वाली शांति, वाणी से परे वाली शांति। तो डेफिनेटली वाणी से परे जाने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो जिसके लिए पहले ही दिन कहा था, तीन मौन धारण करने पड़ेंगे। अगर भट्टी में सचमुच परिवर्तन महसूस करना चाहते हैं तो तीन मौन, मन का, मुख का मौन, माना वाचा को विराम, और मन का मौन माना विचारों को विराम। और विचारों को विराम का मतलब है कि विचारों के माध्यम से जो मैं बाह्य दुनिया से कनेक्ट थी, वहां से डिसकनेक्ट होकर अंतर जगत से स्वयं से कनेक्ट हो जाऊं। और जब स्वयं से कनेक्ट होंगी तब जाकर मेरा घर वो है, मेरा पिता वो है, उसके पास जाके कनेक्ट हो सकती हूँ ना। नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है उसके साथ कनेक्ट होना, उस घर में पहुंचना। तो मन का मौन माना विचारों का विराम, माना दुनिया से, बाह्य दुनिया से डिसकनेक्ट हो जाना और अंतर जगत से कनेक्ट हो जाना। अब अंतर जगत से भी जब कनेक्ट होने का संकल्प करते भी है कि चलो बाह्य बातों से मैं अपने आप को अलग करूं, तो अंतर जगत में जाने पर क्या होता है कि कनेक्ट होना था आत्मा से, पर होता किससे कनेक्शन है अंदर जाने के बाद भी, कि इन इंद्रियों के माध्यम से जो बाह्य दुनिया में झांक झांक कर डेटा कलेक्ट कर रहे थे, और वो जाके अंदर स्टोर हुआ और वो स्टोर डेटा मेरे सामने आ रहा है, आत्मा तो मेरे ध्यान पे आई नहीं रही है। भले मैं आंखों से नया दृश्य नहीं देख रही हूँ, भले मैं कानों से नई बात नहीं सुन रही हूँ, भले मैं मुख से किसी से नए से बात नहीं कर रही हूँ, पर अभी तक जो कर चुकी मैं वो अंदर स्टोर हो गया, उसका स्टॉक जमा हो गया है। अब वही वाली सारी बातें मेरे सामने आ रही है। तो कई बार मन कहता है ऐसे बैठने से तो अच्छा है कि यहां से उठ जाऊं, क्योंकि ये टाइम ही तो वेस्ट जा रहा है मेरा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। बैठा हूं स्वयं से कनेक्ट होने के लिए, पर स्वयं से तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं, बल्कि सारी जो बातें इकट्ठी की थी वो वारी वारी से आती जा रही, तो ये एक तरीके से तो मैं टाइम को वेस्ट कर रहा हूं, तो मुझे यहां से उठ जाना चाहिए। आता है ना ऐसा संकल्प कई कई बार, ऐसे ही कहते हैं। एक बार अभी मई का मास चल रहा है, हिंदू पंचांग के अनुसार कहें तो जेठ मास चल रहा है, जेठ की तपती धूप कहते हैं ना, तो न सिर्फ जेठ मास चल रहा है लेकिन कल 25 तारीख से नौ तपा भी शुरू हो गया है। हम माउंट में हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन माउंट से नीचे उतरेंगे तो नौ तपा का आभास शुरू हो जाएगा। और नौ तपा माना क्या होता है कि सूर्य की गर्मी भीषण रूप में होती है, या यूं कहें कि सूर्य की गर्मी आसमान से धरती पर आग बरसाती है। तो ऐसा ही जेठ मास का समय था, दोपहर 12 बजे का समय, महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ वन से गुजर रहे थे। धूप तेज थी, प्यास तेज लगने लगी, एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने शिष्य आनंद, जिसको हर बात में कुछ न कुछ सीखने की हमेशा जिज्ञासा बनी रहती थी, उस आनंद से कहा कि हम जिस रास्ते से गुजर कर यहाँ पहुंचे हैं वहां हमने एक झरना देखा था, जाओ मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, उस झरने से जाकर पानी लेकर आओ, बहुत प्यास लगी है। आज्ञा पाकर आनंद चला पीछे की ओर, जाकर देखता है कि जिस झरने से वो गुजरे थे इस समय वो झरना कैसा है, क्योंकि झरना था बहुत छोटा और उसी समय कुछ बैलगाड़ियां वहां से गुजरी थी, जिस कारण से झरने का पानी पूरा गंदा हो चुका था, कीचड़ ऊपर उठकर आई थी, पानी गंदा हो गया था, पीने योग्य नहीं था, सूखे पत्ते भी उसमें बह रहे थे। सोचा ये पानी तो पीने योग्य है नहीं, तो पानी लूं तो कैसे, जब पीने योग्य है ही नहीं, प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए परंतु है तो पीने योग्य नहीं। तो बिना पानी लिए वो वापस चल पड़ा और महात्मा जी से कहा कि आपने जिस झरने की तरफ मुझे भेजा वहां का पानी पीने योग्य नहीं है, वहां पे बहुत कीचड़ उथली हुई है, पानी बहुत गंदा है, आप कहो तो मैं थोड़ा आगे जाऊं, कुछ मील दूरी पर ही एक नदी है, मैं वहां से आपके लिए पानी लेकर आ जाता हूं। महात्मा जी कहते हैं नहीं, आप वापस उसी झरने की तरफ जाओ और वहीं से पानी लेकर आओ। अब आज्ञा है, टाल नहीं सकते, जाना पड़ा, लेकिन बेमन से गया और यही मन में सोचा जाना माना अपना समय गंवाना और कुछ नहीं, और सच में गया, फिर देखा कि पानी तो गंदा है, फिर से आकर कहता है, महात्मा जी मैंने आपसे पहले ही कहा था, परंतु आपने अपनी जिद के वश मुझे भेजा और मैंने आपके आज्ञा पालन के अनुसार गया, परंतु पानी तो अब भी वहां पर गंदा है, पीने योग्य नहीं है। फिर तीसरी बार महात्मा जी ने कहा, अब जाओ। फिर मन नहीं था, लेकिन आज्ञा का पालन, फिर गया। लेकिन अब की बार जब गया है वो वहां, पानी साफ है, कीचड़ नीचे बैठ चुकी है, सूखे पत्ते बहकर आगे चले गए हैं और दृश्य देखते ही चेहरे पे मुस्कान बिखेर गई और जल लेकर खुशी खुशी नाश्ता गाता हुआ महात्मा जी के पास आया और महात्मा जी को जल सौंपा और महात्मा जी को थैंक्स किया। अद्भुत है आपके तरीके जीवन के रहस्य समझाने के। महात्मा जी मैं समझ गया, जीवन में धैर्य का होना बहुत अनिवार्य है। एक लेसन ये मैं समझा और दूसरा लेसन मैंने ये समझा कि कुछ भी स्थायी नहीं रहता है, बहते जाता है, बहते जाता है, और इसलिए उसे बहने का समय देना चाहिए ताकि शुद्धता को पुनः अनुभव किया जा सके। और बात तो यही थी, महात्मा जी तो उसको यही शिक्षा देना चाहते थे क्योंकि उसको हर बार जिज्ञासा रहती थी हर चीज को समझने की। तो जब वो दूसरी बार गया था ना, तो दूसरी बार उसने ये भी कहा था कि महात्मा जी क्या मैं पानी को स्वच्छ करने के लिए वहां कुछ कर सकता हूँ। महात्मा जी ने कहा, नहीं कुछ करना नहीं, करने के चक्कर में पानी को तुम और ज्यादा गंदा करोगे, तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ उस झरने के किनारे पर जाके खड़े रहना है, अंदर भी नहीं उतरना है, अंदर उतरोगे तो उपद्रव मचा दोगे और कीचड़ बढ़ा दोगे, सिर्फ बाहर किनारे पे खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ प्रतीक्षा करना है। और वही उसने किया है, तीसरी बार गया तब तक क्या हो रहा, प्रतीक्षा ही थी वो। तो आरंभ में तो उसको लगा कि महात्मा जी मुझे भेज रहे हैं, ये समय वेस्ट है और कुछ नहीं है। तो कई बार हमें भी ऐसा लगता है, एक एक घंटा हमें ऐसे मौन में बिठाया जा रहा है, ये क्या टाइम वेस्ट नहीं है, इससे अच्छा कोई कमेंट्री चला दिए होते, आता है ना कई बार मन में, इससे अच्छा कोई क्लास हो गई होती, या तो हमें ईयरफोन लगाने की छुट्टी दे दी गई होती। ये तो फालतू टाइम वेस्ट हो रहा, एक घंटा मधुबन में आए हैं अमूल्य समय निकाल कर और एक घंटा यूं ही बिठा देते, टाइम वेस्ट हो रहा हमारा, हम भी आनंद है ना, तो हमको भी ऐसे ही संकल्प आएंगे ना। लेकिन बाबा, बाबा को पता है यही प्रोसेस होती है, थोड़ा सा धीरज रखना पड़ता है, रखना पड़ता है थोड़ा सा धीरज, और उस धीरज के बाद रिजल्ट आती है। बिना धीरज के रिजल्ट नहीं आएगी, हम कहें हम बैठे और एकदम से हो जाए, वो कब हो सकता है, जब मैंने पहले ही बहुत सफाई कर चुकी हूँ। अगर बहुत सफाई पहले नहीं हुई हुई है और बहुत ऐसा वैसा डाल दिया गया है, तो जब तक वो निकलेगा नहीं, वो सामने आएगा ही आएगा। आप देखो, शरीर का एक मैकेनिज्म है, ब्रेन को सिग्नल मिलते हैं, जैसे रास्ते पे जा रहे हैं, कांटा दिखा तो सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास कि कांटा है, फिर ब्रेन वहां से मैसेज देगा पैर हटा लो, लेकिन वो इतना फास्ट होता है हमें पता नहीं चलता है कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन ये सारे सिग्नल आते और जाते हैं, उसके अनुसार हमारा शरीर कार्य कर रहा होता है। ऐसे ही कहते हैं जो लीवर है हमारा, वो हमारा सेकेंड ब्रेन है। लीवर भी क्या है? सेकेंड ब्रेन है। और कुदरत ने जब इस शरीर की रचना की, तब इस लीवर जो सेकेंड ब्रेन है, इसकी एक अच्छी सी प्रोग्रामिंग कर दी, इसके हाथ में एक लिस्ट दे दी कि कौन सी चीजें शरीर में प्रवेश करेगी तो शरीर के हितकारी है और कौन सी चीजें शरीर के हितकारी नहीं है, और इसलिए आपको किसको परमिशन देना है, किन चीजों को यहाँ पर टिकने की छुट्टी देना है, और जिनको छुट्टी नहीं देना है मतलब उसके साथ संघर्ष। आज देखो सिक्योरिटी गार्ड को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, बिना बैज वाला व्यक्ति कोई आता है उसको एंट्री नहीं देना, डाइनिंग हॉल वालों को इंस्ट्रक्शन, भट्टी वालों को ही अंदर वाले डाइनिंग हॉल में खिलाना, सौगात वालों को इंस्ट्रक्शन, बैज वालों को ही सौगात देना। तो ये पहले से इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और उस अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे लीवर के पास प्रोग्रामिंग की हुई एक लिस्ट दी हुई है प्रकृति ने, कि प्रकृति जो पैदा कर रही है वस्तुएं खाने के लिए, जो शरीर के हित में है, उसकी एक लिस्ट उसको थमा के दे दी है कि ये चीजें आएंगी तो इसको अलाउ करना, और इसके अलावा कोई चीज आए तो उपद्रव खड़ा कर देना। और उपद्रव होता है, बुखार क्यों होता है? कोई वायरस जो हमारे शरीर के लिए हितकारी नहीं है तो बुखार के रूप में उपद्रव होता है, कभी उल्टी के रूप में उपद्रव होता है, कभी दस्त के रूप में उपद्रव होता है। हाँ, और जो तनाव मुक्ति वाले सेशन कराते हैं लोग, उसमें ये सेशन बताते हैं, बात बताते हैं, तनाव तो क्या है? एक इंडिकेशन है। तनाव अपने आप में कोई रोग नहीं है, लेकिन तनाव अपने आप में एक अलार्म है कि अंदर वो चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए, और उसकी तरफ आपका अटेंशन नहीं, तनाव क्रिएट होके आपका उसने ध्यान खींचा, अटेंशन दो। यही कहते हैं तनाव मुक्ति के लेसन सब कराते हैं। हमारे शरीर के अंदर लाल रक्त कण भी है और श्वेत रक्त कण भी है। श्वेत रक्त कणों का क्या फंक्शन है, कार्य है? लाल रक्त कणों में कोई विजातीय पदार्थ आ जाए तो तुम मुझसे लड़ाई शुरू कर देना, और उसी लड़ाई में बुखार आदि होता है। ठीक ऐसे ही हमारे अंतःकरण की भी प्रोग्रामिंग की हुई है, हमारे चित्त की भी प्रोग्रामिंग की हुई है। जब आत्मा पहली बार धरती पर आती है तो शरीर मिलता है, चित्त भी मिलता है ना? क्योंकि जब हम परम धाम जाएंगे, हमारे संकल्प चलने वाले हैं वहां पे, संकल्प चलने वाले हैं वहां पे, वहां मन भी नहीं होगा ना, नहीं होगा ना? तो वो चित्त मन बुद्धि चित्त अहंकार जो चतुर्थ अंतकरण कहते, वो यही मिलेगा ना हमको? तो उसकी भी एक प्रोग्रामिंग की हुई है। आप जैसे कोई कंप्यूटर में आप कोई एक सीडी लेते हैं, प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं ना, और फिर वो इंस्टॉलेशन वाली सीडी तो अलग पड़ी रहती है कि कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर से इंस्टॉल करेंगे। ऐसे ही आत्मा भी जब आती है पहली बार, चित्त में इंस्टॉल कर देती है डिविनिटी को, प्योरिटी को, आत्मा के जो गुण है उसको इंस्टॉल कर देती है और उसको प्रोग्रामिंग दे देती है। इसके अलावा वाली कुछ वृत्तियां अगर यहां बैठे और घुसपैठ करके अपना अड्डा जमाने की कोशिश करे तो तुमको चुप नहीं बैठना है, तुमको चुप नहीं बैठना है। अर्थात डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण, आत्मीय गुण, परमात्मा वाले गुण वहां पे इंस्टॉल हो जाते हैं। और अगर यहाँ पे दुष्प्रवृत्तियां, मायावी प्रवृत्तियां, आसुरी प्रवृत्तियां, आसुरी गुण अगर इधर आ जाए तो उसको अपनी जड़ें चबाने नहीं देना है, आत्मसत्ता के अंदर उसको प्रवेश होने नहीं देना है। और उसके लिए तुम्हारी उसके साथ शुरू हो जाए फाइटिंग, और उसी फाइटिंग के चक्कर में तो अशांति होती है, और किस लिए होती है? उसी के चक्कर में बुखार क्यों हुआ था, उल्टी क्यों आई थी, दस्त क्यों हुए थे? शरीर के लिए जो हितकारी नहीं है वो उसका इंटेक हो चुका है, शरीर को प्रोग्रामिंग मिली हुई है, शरीर अपना काम कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड को किसने ताकत दी कि आपसे इतना प्रश्न उत्तर करे? मैनेजमेंट ने उसको अधिकार दिया है। नहीं तो आप बोल सकते हो, आप कौन हो सकते हो मेरे से प्रश्न उत्तर करने वाले, तुम कौन रोक रहे हो मुझे, बोल सकते हो ना? परंतु नहीं, पता है ये मैनेजमेंट वालों ने ही इनको यहां खड़ा किया है, और इसलिए उनको अधिकार है। हमारे पास अगर बैज नहीं है तो प्रश्न उत्तर करने का अधिकार है। और अगर हम बैज दिखाने में असफल हुए या कोई कारण बता के कि ये कारण से हमारे पास बैज नहीं, वरना हम यही के हैं, ये बताने में असफल हुए, तो वो आपको अंदर आने से रोकेगा। फिर भले आप कहो कि अरे हमको तो भट्टी में बुलाया गया और सिक्योरिटी गार्ड ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, वो ठीक ही था। सिक्योरिटी इतने बड़े कैंपस की सिक्योरिटी है ना, तो वो अपनी जगह पर सही था। तो जैसे यहां पर सिक्योरिटी के लिए, कैंपस के सिक्योरिटी के लिए कुछ व्यवस्था है, ऐसे शरीर के सिक्योरिटी के लिए कुछ व्यवस्था है, ऐसे अंतःकरण की सिक्योरिटी के लिए भी व्यवस्था है। और इसी व्यवस्था के अंतर्गत कोई ऐसे गुण जो हमारे आत्मीय गुणों के, दैवी गुणों के विपरीत होते हैं, तो अंदर में शांति का अनुभव नहीं होकर अशांति का अनुभव होता है, शीतलता का अनुभव ना होकर ताप का, संताप जिसको कहते हैं ना, शरीर को ताप गर्म, और इधर के ताप को क्या बोलते हैं, संताप, यही बोलते हैं ना, संताप का अनुभव होने लगता है, अनइजीनेस लगता है, कंफर्ट निकल जाता है, बेचैनी मिलती है, ये महसूस होता है। तो जब एकांत में बैठते तो फिर यही तो होता है, एकांत में बैठते तो यही होता है ना। तो जैसे कहा ना, टेंशन अपने आप में कोई बड़ा रोग नहीं, लेकिन वो आपको इशारा दे रहा है जो नहीं होना चाहिए था अंदर में वो है, आप अलर्ट हो जाइए। तो इसलिए जब एकांत में हम बैठे और हम फिर से अशांति से घिर जाए, ताप से घिर जाए, बेचैनी से घिर जाए, धैर्य को टूटने नहीं देना, धैर्य को टूटने नहीं देना। और इसलिए चलो धैर्य चलो टूट भी जाता है, इसीलिए फिर एक व्यवस्था की गई है कि बड़ों की आज्ञा अनुसार चलो। इतना तो निश्चय रखो, बड़े कह रहे तो हमारे भले के लिए कह रहे। आज बाबा ने निश्चय बुद्धि पर चला ही मुरली, कि कौन कह रहा है एकांत का महत्व बढ़ाओ, मौन में रहो? कौन कह रहा है? इंदिरा बहन कह रही है क्या? भगवान कह रहा है। इंदिरा बहन तो सिर्फ निमित्त बनी है उसकी क्लैरिटी जो मैंने समझी वो आपके सामने रखने के लिए, लेकिन डायरेक्शन किसका है? परमात्मा का है। तो अगर परमात्मा कह रहा है मौन में रहो और मैं मौन में जब बैठती हूं मेरे सामने तो ये होता है, लेकिन भगवान कह रहा है कि नहीं आपको मौन में रहना है, तो थोड़ा तो धीरज, जैसे उसने भी, उसको तो लगा आनंद को, ये तो टाइम वेस्ट वाली बातें, पर फिर भी जिसको मैंने गुरु बनाया है उसमें मुझे निश्चय है तो आज्ञा का पालन किया, भले बेमन से किया, पर गुरु कह रहा है उसकी आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता। न सिर्फ टाल नहीं सकता, अपनी मनमत भी बता दी कि मैं उसको स्वच्छ करने के लिए कुछ उपाय कर सकता हूँ क्या? तो हम भी कई बार ऐसे बोलते हैं ना, बहन जी एकांत में ऐसे कुछ आवाज नहीं, कुछ नहीं, कमेंट्री नहीं, गीत नहीं, बस इसे बैठ जाओ, मेरा तो कुछ कुछ हो रहा है, कम से कम ईयरफोन तो लगा दूं मैं। हाँ, होता है ना, हम भी थोड़ी थोड़ी मनमत चला ही देते हैं, परंतु क्या कहा उसको महात्मा ने आनंद को, स्वच्छ करने का उपाय भी नहीं करना है, जिस झरने का पानी लाना उसमें कूदना भी नहीं है, जितना कूदोगे उसका पानी और ज्यादा गंदा करोगे, आपको सिर्फ किनारे पर रहना है, सिर्फ प्रतीक्षा करना है, आपकी प्रतीक्षा करना अर्थात धैर्यता को बांधे रखना आपको सामने स्वच्छ जल प्रदान करेगा। और हुआ भी ऐसे ही। तो हमें भी एकांत में क्या करना होता है, हमने बाहर से कनेक्शन जोड़ा, अंदर गए, लेकिन जो बाहर वाली बातें अंदर थी वो आके सामने खड़ी हुई, लेकिन अभी हमें उसके साथ बहना नहीं है, नहीं बहना है उसके साथ, क्योंकि वो बाहर वाली बातें हैं। कहाँ की बातें हैं? बाहर वाली बातें हैं, जड़ दुनिया की बातें हैं। और जड़ क्या है? हमेशा रहेगा ये शरीर, जड़ हमेशा रहेगा, ये संबंध हमेशा रहेंगे, रिश्ते नाते, वस्तु वैभव इकट्ठा किया है, हमेशा रहेंगे? नहीं रहेंगे। एक फिलासफर हुए, जैसे एक सुकरात नाम के फिलासफर हुए हैं, ऐसे ही एक फिलासफर हुए जिसका नाम है हेराक्लाइटिस, और उसने कहा कि आप एक नदी में दो बार कदम नहीं रख सकते। क्या है इसका अर्थ? नदी जिसका स्वभाव है बहते रहना, जीवन का भी स्वभाव है, आज एक सीन, कल दूसरी सीन, परसों तीसरी सीन, ऐसा ही हो रहा है जीवन में, न सिर्फ एक सीन, दूसरी सीन, तीसरी सीन, कल मैं कुछ और था, आज मैं कुछ हूं, परसों कुछ होऊंगा, चेंज होता रहता है अंदर भी, कल आ रहा था मैं इसको तमाचा मारने वाली, इतना मेरा उसने इंसल्ट किया है, आज थोड़ा सा ज्ञान सुन लिया, नहीं नहीं मुझे सब्र रखना है, भावों में चेंज आता है। तो नदी में, एक नदी में दो बार नहीं पांव रख कदम रख सकते, मतलब क्योंकि एक बार जहां आपने कदम रखा था वो पानी तो बह गया, जब दूसरा रखने जाओगे तो दूसरा पानी होगा। ऐसे ही हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं, रोज नया नया परिवर्तन हो रहा है नहीं, और जिसके जीवन में परिस्थितियां आ रही हैं, मेरे जीवन में मैं स्वयं बदल रही हूं हर दिन, मेरी मानसिकता हर दिन चेंज हो रही है, तो झरने का तो स्वभाव है उसको बहने देना, तुम कुछ नहीं करना, तुमसे प्रतीक्षा करना। पर हमें आदत पड़ गई है ना करने की, कुछ करना ही है। और बाबा इतना सिंपल देता है, कुछ नहीं करो, सिर्फ साक्षी बनकर। प्रतीक्षा करना भी क्या था, साक्षी होकर देखना था सिर्फ। यहां पर भी जो सीन आएगी उसको सिर्फ साक्षी होकर देखना है। जब हम साक्षी होकर देखते, जैसे झरने में क्या हुआ, साक्षी होकर देखा, गंदगी निगल ली गई, पता ही नहीं चला कहां चली गई, पानी स्वच्छ हो गया। ऐसे ही जब हम साक्षी होकर देखेंगे ना, तो ये जो मायावी प्रवृत्तियां हमारे अंदर आसुरी चलती रहती है, ये निगल ली जाएगी और शेष रह जाएगी आत्मा। इस शरीर के संदर्भ में भी आज ऐसे ऐसे रिसर्च हुई है कि लाइलाज बीमारियां जिसकी दवाइयों से कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, आज कहते हैं सिर्फ फास्टिंग करो, बीमारी क्योर होती जाएंगी। उस फास्टिंग के दरमियान क्या होने वाला है कि जो अहितकारी चीजें आपके पास जमा हुई पड़ी है, वो निगल निगल के खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारी आदत क्या है, नहीं कुछ डालूंगी तो शरीर ठीक होगा ना, बीमारी ठीक होगी ना, ये एक बिलीफ सिस्टम बन चुका है ना हमारा। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च, और वो व्यक्ति जिसने ये रिसर्च की है कि फास्टिंग से लाइलाज बीमारियां ठीक होगी, उसको एक नहीं दो बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो सिर्फ डालते ही रहने से क्योर नहीं होता है, बल्कि जो डाल दिया गया है उसको निकलने का अवसर दो। ऐसे ही एकांत में बैठे, मौन में बैठे, बस कमेंट्री आती जाए और भरते जाए और भरते जाए, दिस इज नॉट ओनली कि मौन एकांत में बैठे, लेकिन मेरे अंदर जो है, गुस्सा है, तूफान है, वट एवर, जो कुछ भी, हर एक की अलग अलग परिस्थितियां हैं और उस अनुसार अलग अलग मन में चल रहा है, जो कुछ भी है उससे अपने आप को अलग होकर देखो। सिर्फ और सिर्फ देखो, अंदर ही अंदर उसके साथ बोलो भी नहीं, बोला माना वाणी में आ गए। एक होता है आवाज के साथ बोलना और एक होता है मन ही मन बोलना, है ना। तो यहां बात है मौन, वाणी ही नहीं चाहिए, चाहे वो दूसरे से चाहे वो अपने से, सिर्फ मौन, जहां सिर्फ देखना है। और देखने का मतलब क्या है, देखने का मतलब क्या है, दृष्टा का मतलब क्या है। अगर मैं कहूं कि मैं इस समय दृष्टा हूं और आप मेरे लिए इस समय दृश्य हो, तो सिर्फ मैं देख भी रही हूं या आपको सुन भी रही हूं, सुनना भी उसी में कवर हो गया ना। तो जब हम कह रहे कि सिर्फ दृष्टा बनकर देखो, तो कुछ देखे हुए दृश्य होंगे, कुछ सुनी हुई बातें होंगी, कुछ बोले हुए शब्द होंगे, वो सब आएंगे ना सामने, बस दृष्टा बन जाना है और सिर्फ इंतजार करना है। उस इंतजार में, उस धैर्यता में वो जो आ रहा था वो बहता जाएगा। मुझे उसके साथ नहीं बहना है, मुझे उसके साथ उसमें जंप लगाया, ऐसे नहीं होता है कई बार बड़े पर्दे पर हम टीवी या फिल्म कोई देखते हैं, वहां कोई सीन चल रही होती है और वो सीन कोई हमारे घर के सदस्य से कोई मिलती जुलती होती, हाँ ये भी बिल्कुल ऐसा जिसके जैसा है, मतलब क्या किया हमने, कूद गए उस फिल्म के अंदर। तो हम कूद गए फिल्म के अंदर तो क्या हुआ, अभी तक हम सब आराम से देख रहे थे, लेकिन एक नया और एक कुभाव कि अच्छा ये वो बोले अच्छा मैं ऐसा हूं। तो आज दिन तक मैं उसको समझती हूं और एडिशन कर दिया। तो मैंने क्या किया, फिल्म में इन्वॉल्व होने के बाद कहानी थी वो तो फिक्शियस थी, वो भी कोई रियल की नहीं थी, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व होके इधर वाला रिश्ता और खराब कर दिया, मैंने और खराब कर दिया ना। तब कहा कि हम उसमें कूदे नहीं, जो भी आ रहा है मेरे जीवन में, जो भी हुआ है, जो इंद्रियों के माध्यम से गया है वो आएगा सामने, परंतु वो बहेगा, उसका स्वभाव है आते जाना, आना जाना, आना जाना। और मेरे को सिर्फ प्रतीक्षा करते रहना है कि आखिर तो खत्म हो गए, आखिर तो खत्म होगा। रील खत्म होती है ना, आधे घंटे का सीरियल खत्म होगा या नहीं होगा, 3 घंटे की रील खत्म होगी या नहीं, दी एंड आएगा ना वहां पे। और पर्दे पर सिर्फ क्या होगी, खाली पर्दे पे रोशनी होगी, पहले उस पर्दे पे दृश्य था, अब बिना दृश्य का पर्दा है, सिर्फ रोशनी है। तो कई बार वो जो फिल्म देखी होती है ना, तो चलो सीन तो चली गई, लेकिन सीन की छाप अभी भी आंखों में घूम रही है। वो आंखों से हटे उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। तो इतना वहां पे प्रतीक्षा करना होता है जब हम एकांत का समय हमें मिलता है कि भाई एकांत में बैठो, सेल्फ चेकिंग करो। और अगर ऐसे नहीं कर पाए, मतलब क्या हुआ, अगर नहीं कर पाए, आज बाबा ने किसको याद किया, बाबा ने कहा राम और रावण की बड़ी कॉम्पिटिशन है ना, उसमें उस युद्ध जब चली राम रावण की, तो कौन मूर्छित हो गया था, मूर्छित कौन हो गया था, लक्ष्मण। लक्ष्मण माना क्या, लक्ष्मण माना क्या, पहले तो वो कैसे मूर्छित हुआ, तो कहा कि जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो लक्ष्मण की भिड़ंत थी मेघनाद से, और लक्ष्मण तो था बहुत माहिर था, और फिर मेघनाद उसको नहीं हरा पा रहा था, तो छल कपट कर रहा था, लेकिन चूंकि ये निपुण था वो नहीं हरा पा रहा था, पराजित नहीं कर पा रहा था, आखिर उसने उसको व्यंग मारा, क्योंकि हनुमान जी वहीं थे, क्या हनुमान जी के आड़े में रहकर युद्ध कर रहे हो। तो जब ऐसा बोला तो लक्ष्मण ने हनुमान जी से कह दिया आप साइड हो जाओ, और जैसे ही वो साइड हुआ तो मेघनाद ने शक्ति का बाण चला दिया, और शक्ति बाण में लक्ष्मण मूर्छित हो गया। और सभी जानते हैं उस मूर्छा से निकालने के लिए, उसको सुरजित करने के लिए, उसी हनुमान को जो हटा वहां से, उसी हनुमान को सुषेण वैद के कहने पर वो हिमालय की पहाड़ी से वो संजीवनी बूटी लानी पड़ी, और जब वो संजीवनी बूटी उसको सुंघाई गई और उसके जो उसकी अनकॉन्शियस थी, जो मूर्छा थी, वो उसकी निकल गई, वो वापस होश में आया। लक्ष्मण कौन है, हम क्या बताते हैं, लक्ष्मण माना मन को लक्ष्य मिला है, बोलते हैं ऐसे, कौन सा लक्ष्य मिला है, कौन सा लक्ष्य मिला ये तो बताओ। तो लक्ष्मण क्या करता था, कहा कि नींद का त्याग, और नींद का त्याग, नींद ना करना माना जागना, अपोजिट नींद का क्या है, जागना। तो लक्ष्मण को कौन सा लक्ष्य मिला है, जागरूक रहने का, जागरूक रहने का। और वो उसकी जागरूकता, मूर्छा में आना मना उसकी जागरूकता भंग हो गई, कब हुई, जब हनुमान जी को हटाया, भले वहां से बाण आए, लेकिन मतलब माया का बाण कब लगा? जब हनुमान को हटाया। और हनुमान क्या है? हमारी सांस, पवन पुत्र है ना, सांस चल रही है ना। तो जब श्वासोश्वास अगर भगवान बाबा याद नहीं रहेंगे हमको, शिव बाबा नहीं रहेंगे, तो जैसे ही वो हटेगी, माया हम पर वार करेगी, हमारी जागरूकता, और जैसे ही जागरूकता जाएगी तो जो दृश्य आ रहा था ना एकांत में, एकांत में जो कहा कि साक्षी होकर देखना, मतलब जागरूक रहना है सिर्फ। एक सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है रात को? क्या करते हैं? जागरूक रहते हैं सिर्फ, जागो जागो, है ना। तो मुझे सिर्फ जागरूक रहना है, और वो जागरूकता मेरी बेहोशी में कब बदल जाएगी? जब मैं भूल जाऊंगी कि बाबा का डायरेक्शन है ऐसे रहने का। हटा दूंगी, अरे ऐसे क्या होता है, ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, बाबा का डायरेक्शन है एकांत में बैठो, मौन को धारण करो, वो स्थिति बनाओ वाणी से परे वाली जो परम धाम में थी। ऐसे ही थोड़ी कहेगा बाबा हमें, बाबा हमें अपने जैसा ऊंचा बना रहा है, उसके लिए क्या चाहिए उसको पता है ना। एक माँ बाप को पता होता है ना बच्चे को लायक बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। बच्चे को कई बार लगता है ये सब फालतू है, लेकिन माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा धूप में बाल नहीं पकाए हैं मैंने, कहते हैं ना, पर ये बाप को तो बाल भी नहीं है। लेकिन ये बाप ब्रह्मा बाबा में आता है, उसको तो बाल है, हाँ? और उसके तो अनुभव हम सब सुनते हैं कि बाबा कैसे मौन में रहते थे। तो ऐसा जब हम मौन में रहेंगे ना, वो सारा अशुद्धि, वो जो भी आ रहा है वो अशुद्ध है, वो अशुद्धियां नीचे गिरेगा ना, कीचड़ नीचे बैठ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चली गई, और फिर रह जाएगा वो आत्मा का प्रकाश, क्योंकि दृश्य प्रकाश में दिखता है ना, तो कौन से प्रकाश में देख रहे थे वो सब? आत्म ज्योति के प्रकाश में तो दिख रहा है, ज्ञान के प्रकाश में देख रहे थे ना, तो आत्म ज्ञान रह जाएगा, क्योंकि अंतःकरण को प्रोग्रामिंग दी हुई है ये अंदर आने नहीं देना है, इसलिए फाइटिंग चलेगी। लेकिन उस फाइटिंग को फिर ऐसे दूर से बैठकर देखेंगे तो छूट पाएंगे, वरना तो दो सांड जब लड़ते हैं ना, जिस जगह पे लड़ाई करते हैं ना, उस जगह को तहस नहस कर देते हैं। अगर वो खेत में खड़े होकर लड़ रहे हो ना, तो पक्का फसल चौपट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी लड़ाई नहीं करना है, लड़ाई नहीं होने देना है, बस उसको प्रतीक्षा, उपवास। यहाँ के लिए भी उपवास नोबेल पुरस्कार मिला है। भगवान तो बहुत बड़ा रिसर्चर है ना, उसको नहीं पता है क्या? तो वो भी कहता उपवास माना ही मत आओ वाणी में, न ये वाली वाणी न विचार वाली वाणी, बस दृष्टा होकर देखो, देखते देखते वो सब नीचे बैठ जाएगा और आत्म प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा। मैं आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर पिता की संतान, शांति धाम के निवासी, उस पिता परमात्मा की शांति की किरणें मुझ पर और मुझसे सारे विश्व पर, मैं शांति दूत बनकर पूरे विश्व को शांति की किरणें दे रही हूँ, और इन्हीं शांति की किरणों से सत्ययुगी शांति की दुनिया स्थापित हो जाएगी। तो बाबा हमसे यही चाहते हैं, बाप समान बनना. मतलब क्या क्या किया ब्रह्मा बाबा ने? हाँ, ब्रह्मा बाबा को दोनों साक्षात्कार करा दिए. पुरानी दुनिया जिसका विनाश होना है, नई दुनिया जिसका स्थापन होना है. तो हमेशा बाबा क्या कहते हैं, दो आंखों में क्या हो तुम्हारे? एक आंख में शांति धाम, दूसरे आंख में सुख धाम. तो वो सुख धाम फिर लाने के लिए, अगर ऐसा सुख धाम लाना है तो जो मैंने पाया है वो सब पर लुटाना है. जब मैंने पाया है तो ही लुटा पाऊंगी, और मैंने पाना है तो बिना मौन के नहीं पा सकते हैं. कहने का तात्पर्य, हमेशा हमेशा सिर्फ इन कानों से अंदर कुछ जाता रहे, इन आँखों से कुछ अंदर जाता रहे, तब ही योग होगा. ये बिलीव सिस्टम को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. मुझे स्वयं को स्वयं के साथ बैठना है और उसकी फ्रिक्वेंसी पर अपने आप को लाना है, तब जाकर मैं उसके साथ इजीली कनेक्ट हो जाऊंगी. इजीली कनेक्ट हो जाऊंगी तो उसकी एनर्जी मुझे भरेगी. मेरे पास जो भी कचरा हिडनली कोने काने में पड़ा है वो उसको भस्म करता चला जाएगा और मैं एकदम बन जाऊंगी पारदर्शी. और पारदर्शी माना ही मेरे से वही किरणें चारों ओर फैलती रहेंगी जो मैं हूँ. कौन हूँ मैं? मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं खुशी का स्वरूप हूँ, मैं आनंद का स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं दिव्य स्वरूप हूँ. वो दिव्यता, वो शक्ति, वो प्रेम से चारों ओर फैलेगा. मुझ में आत्मबल होगा, मुझ में मनोबल होगा, मुझ में आत्मविश्वास होगा. ऐसी स्थिति में अगर शारीरिक रीति से हम बलवान होते, छोटी मोटी बीमारियां हम पर अटैक नहीं कर सकती है. ऐसी आत्मबल बड़ा होगा तो दुनिया में चाहे कैसी भी परिस्थितियां खड़ी हो जाए, मुझे डिगा नहीं सकती, मुझे डरा नहीं सकती, मुझे भयभीत नहीं कर सकती, मुझे चिंतित नहीं कर सकती. मैं अचल अडोल एक लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर पूरे विश्व को किरणें फैलाती हुई, शांति दूत का कार्य करती हुई, हाँ, बाबा की लाडली बन सकती हूँ. जो कहा ना, बाबा कैसे लेके जाएंगे हमें? नैनों पे, पलकों पर बिठाकर लेके जाएंगे. तो ऐसा ही करना है. हाँ, तो अवश्य यहाँ पे जितना अवसर मिला, जितना कर सके, अहो सौभाग्य. लेकिन जाने के बाद ये संकल्प करके जाएं कि हमें ऐसे एकांत के समय निकालना है कि जहाँ हमारे पास कोई कमेंट्री नहीं चलेगी, कोई गीत नहीं चलेगा, कुछ भी आ रहा है मेरा, मुझे उसको साक्षी होकर देखना है. उसी रीति से उसको खत्म कर सकते हैं और जो मैं हूँ, जैसी हूँ, उस स्वरूप में अपने आप को टिका सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उसकी किरणें सारे विश्व को पहुँचा सकते हैं. ओम शांति.